एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
तो आज हम ना इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं।
हाँ, कहाँ का सफर?
20वीं सदी का ब्रिटेन, एक ऐसी सदी जिसने इस देश को मतलब पूरी तरह से बदल कर रख दिया।
बिल्कुल, सोचिए एक इतना बड़ा साम्राज्य और सदी के अंत तक वो बन गया एक आधुनिक यूरोपीय देश, कितना उतार चढ़ाव रहा होगा।
वही तो। और इस सफर को समझने के लिए हम आज बात करेंगे केनेथ ओ मॉर्गन की किताब 20वीं सदी का ब्रिटेन पर।
हाँ, ये बहुत ही अहम किताब है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि कैसे हुआ,
कैसे एक देश ने, आप सोचिए, दो दो विश्व युद्ध झेले,
अपना पूरा साम्राज्य खो दिया
और कितने गहरे सामाजिक आर्थिक बदलाव आए, फिर भी वो देश टिका रहा और एक नए रूप में ढल गया।
सही कहा। और ये कहानी सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर उस देश की कहानी है जो बदलाव से गुजरता है, अपनी पहचान तलाशता है, दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। हमारे लिए भी इसमें बहुत कुछ है।
तो चलिए फिर खोलते हैं इस कहानी की, पढ़ते हैं मॉर्गन क्या कहते हैं, देखते हैं।
हाँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा लेखक के बारे में बात कर ले। केनेथ ओ मॉर्गन।
जरूर। देखिए, केनेथ मॉर्गन कोई मामूली इतिहासकार नहीं है। ब्रिटेन के सबसे सम्मानित, मतलब टॉप के इतिहासकारों में गिने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड में पढ़े, प्रोफेसर रहे, वाइस चांसलर भी बने वेल्स यूनिवर्सिटी के।
अच्छा, वेल्स से है वो।
सील मारी सीधे।
अच्छा, ये बात तो दिलचस्प है।
हाँ, और यही उनके नजरिए को खास बनाता है। वो सिर्फ लंदन या इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते,
वो वेल्स, स्कॉटलैंड, मतलब ब्रिटेन के जो दूसरे हिस्से हैं, उनके अनुभव को भी बराबर वजन देते हैं।
बिल्कुल, इससे ना तस्वीर पूरी होती है। और एक और बात, वो लेबर पार्टी के सदस्य भी रहे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी बैठे हैं।
ओहो, तो मतलब राजनीति की भी गहरी समझ है उन्हें, खासकर लेबर पार्टी और वेलफेयर स्टेट की।
हाँ, उन्होंने एडली जैसे नेताओं पर लिखा भी है, तो उन्हें अकाडमिक गहराई भी है और अंदर की राजनीति की समझ भी।
लेकिन लिखते कैसे हैं? क्या उनका कोई पक्षपात दिखता है?
यही उनकी खूबी है। उनकी अपनी सोच चाहे जो भी हो, लिखते बहुत संतुलित तरीके से हैं, साफ स्पष्ट, मुश्किल चीजों को भी आसान बना देते हैं।
अच्छा।
और तथ्यों को कहानी की तरह पिरोते हैं, इसीलिए 20वीं सदी के ब्रिटेन पर उनकी किताब को इतना अहम माना जाता है।
चलिए तो अब किताब पर आते हैं। मॉर्गन का मेन आर्ग्यूमेंट, मुख्य तर्क क्या है? क्या वो भी यही मानते हैं कि 20वीं सदी ब्रिटेन के लिए बस गिरावट, मतलब डिक्लाइन का ही दौर था?
नहीं नहीं, यही तो बात है। वो इस गिरावट वाली कहानी को, जिसे डिक्लाइनिस्ट थीसिस कहते हैं, उसे सीधा चैलेंज करते हैं।
अच्छा, तो क्या कहते हो?
वो कहते हैं कि हाँ, ये सच है कि ब्रिटेन की वो पहले वाली सुपर पावर वाली हैसियत नहीं रही, साम्राज्य चला गया।
हाँ, वो तो है।
लेकिन वो कहते हैं इसी सदी में ब्रिटेन ने अंदरूनी तौर पर जबरदस्त तरक्की भी की, ये सिर्फ नुकसान की कहानी नहीं है।
मतलब एक तरफ कुछ गया तो दूसरी तरफ कुछ आया भी।
बिल्कुल, मॉर्गन यही बैलेंस दिखाते हैं। कहते हैं देखो, वैश्विक ताकत घटी, पर अपने लोगों के लिए एक मजबूत कल्याणकारी राज्य बनाया, NHS जैसी चीजें आई,
नेशनल हेल्थ सर्विस। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात थी।
आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई, समाज ज्यादा खुला, ज्यादा लिबरल बना, अलग अलग संस्कृतियों के लोग आए बसे, तो इसे सिर्फ पतन कैसे कह सकते हैं?
तो फिर ये कहानी किस चीज की है?
ये कहानी है लगातार बदलाव की, अडेप्ट करने की, चुनौतियों का सामना करने की और खुद को बार बार नए हालात में ढालने की।
जैसे पुरानी चीजें और नई ताकतें आपस में टकरा रही हों।
एकदम सही कहा। पुरानी विरासतें जैसे क्लास सिस्टम, एम्पायर की यादें, और नई ताकतें, डेमोक्रेसी, सोशल रिफॉर्म, ग्लोबलाइजेशन, इनके बीच एक लगातार खींचतान चलती रही।
एक देश का खुद को फिर से बनाना मुश्किल सफर रहा होगा।
हाँ, दर्दनाक भी, मुश्किल भी, लेकिन मॉर्गन दिखाते हैं कि ये हुआ। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, सदी की शुरुआत से।
हाँ, वो एडवर्डियन दौर, 1900 से 1914।
लोग कहते हैं बड़ा सुनहरा जमाना था, शांति थी।
हाँ, ऊपर से देखने पर लगता है शाही शानो शौकत, पार्टियों का दौर, लेकिन मॉर्गन कहते हैं उस सुनहरे पर्दे के पीछे देखो, समाज में भारी उथल पुथल थी।
अच्छा,
किस तरह की?
भयंकर गरीबी, असमानता, और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर हड़तालें, कोयला खदानों में, डॉक्स पर, रेलवे में। इसे ग्रेट अनरेस्ट का नाम दिया गया।
ओहो।
सरकार और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ठनी हुई थी, औरतें वोट के अधिकार के लिए सड़कों पर थीं, सफ्राजेट्स का आंदोलन जोरों पर था,
और आयरलैंड का मसला भी था शायद।
हाँ, आयरलैंड में तो गृह युद्ध का खतरा था, तो कहां से शांत था यह दौर। मॉर्गन का एक कोट है, वो कहते हैं ये कोई स्थिर दुनिया नहीं थी जिसे महान युद्ध ने नष्ट कर दिया, बल्कि एक ऐसी दुनिया जो पहले से ही उथल पुथल में थी।
मतलब युद्ध ने बस आंध में घी डाला
एक तरह से, और पहला विश्व युद्ध 1914-18 अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसने पुरानी लिबरल पार्टी को लगभग खत्म ही कर दिया
और लेबर पार्टी ऊपर आ गई।
हाँ, लेबर मुख्य विपक्षी दल बन गई। युद्ध ने राज्य की ताकत बहुत बढ़ा दी, राशनिंग, जबरदस्ती फौज में भर्ती, ये सब शुरू हुआ।
महिलाओं की भूमिका भी बदली होगी।
बिल्कुल, उन्हें फैक्ट्रियों में काम मिला, नए मौके मिले, और 1918 में कुछ महिलाओं को वोट का अधिकार भी मिला। और युद्ध के जो साझा अनुभव थे, दुख दर्द थे, उसने बाद में सामाजिक सुधारों की मांग को और तेज कर दिया।
अच्छा, फिर आया दो युद्धों के बीच का दौर, 1922 से 1945। ये तो सच में मुश्किल लगता है ना, वो महामंदी वाला टाइम।
हाँ, ये बहुत मुश्किल दौर था। ब्रिटेन के जो पुराने बड़े उद्योग थे, कोयला, टेक्सटाइल, जहाज बनाना, वो सब ढहने लगे।
और बेरोजगारी,
भयानक बेरोजगारी, खासकर नॉर्थ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स में। कहते थे दो ब्रिटेन बन गए हैं, एक अमीर साउथ ईस्ट और एक गरीब नॉर्थ।
और राजनीतिक तौर पर 1926 की जनरल स्ट्राइक हुई थी ना।
हाँ, वो बहुत बड़ी घटना थी। और फिर विदेश नीति में वो तुष्टीकरण, मतलब हिटलर को खुश रखने की कोशिश, ये सब इसी दौर में हुआ। ये वो दौर है जो पतन वाली सोच को सबसे ज्यादा मजबूत करता है।
लेकिन मॉर्गन यहाँ भी कुछ अलग देखते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि इसी दौर की जो बुरी यादें थीं, भूख मार्च, बेरोजगारी की लाइनें, इन्हीं अनुभवों ने लोगों के मन में एक इच्छा जगाई।
किस चीज की इच्छा?
एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट की, कि सरकार हमारी देखभाल करे। और फिर जब दूसरा विश्व युद्ध 1939-1945 शुरू हुआ,
जनता का युद्ध कहा गया।
हाँ, तो ये इच्छा और पक्की हो गई। युद्ध की जो साझा अनुभव थे, जैसे लंदन पर बमबारी, ब्लिट्स,
जी,
राशनिंग, इसने लोगों को एक साथ ला दिया।
और इसी दौरान वो बेवरेज रिपोर्ट आई थी।
बिल्कुल, 1942 में विलियम बेवरेज ने वो मशहूर रिपोर्ट दी, जिसने पांच बड़ी बुराइयों से लड़ने का प्लान बनाया। गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, गंदगी और आलस्य, ये भविष्य के वेलफेयर स्टेट का नक्शा था।
तो युद्ध ने सिर्फ तबाही नहीं मचाई, बल्कि एक नए समाज की नींव भी रखी।
हाँ, युद्ध एक तरह से सामाजिक क्रांति का इंजन बन गया।
और इसी माहौल में 1945 का चुनाव हुआ, जिसमें क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी जीत गई।
और कैसे जीती? जबरदस्त बहुमत से। मॉर्गन कहते हैं कि ये कोई अचानक हुई बात नहीं थी, ये उन लोगों का फैसला था जिन्होंने मंदी और युद्ध झेला था।
वो क्या कह रहे थे अपने वोट से?
वो कह रहे थे कि हमें पुराने तरीके नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, बराबरी चाहिए, एक समाज चाहिए जो सबका ध्यान रखे। मॉर्गन का एक और कोट याद आता है, 1945 में लेबर की भारी जीत कोई क्षणिक विपतन नहीं थी, बल्कि एक नए सामाजिक अनुबंध की मांग थी।
और एटली सरकार ने वाकई बड़े काम किए। फिर
इतिहास बदल दिया। सबसे बड़ा काम तो 1948 में NHS का बनना, हर किसी के लिए मुफ्त इलाज, सोचिए जरा।
हाँ, ये तो क्रांतिकारी था।
फिर कोयला, रेल, बिजली, इन सब का राष्ट्रीयकरण, बड़े पैमाने पर घर बनाए गए, मतलब आधुनिक ब्रिटेन जिसे हम जानते हैं उसकी नींव इसी दौर में पड़ी।
और ये व्यवस्था क्या लंबे समय तक चली?
हाँ, करीब करीब 1970 तक। कमाल की बात यह है कि बाद में जो कंजर्वेटिव सरकारें आईं, उन्होंने भी इसे मोटे तौर पर बनाए रखा। इसे बट्सकिलिज्म कहते हैं, मतलब कंजर्वेटिव और लेबर दोनों की मिलीजुली नीतियां।
तो ये आम सहमति का दौर था, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही थी।
हाँ, जीवन स्तर सुधरा, लोग चीजें खरीदने लगे, उपभोक्तावाद बढ़ा, 60s का दशक आया, स्विंगिंग 60s, थोड़ा खुलापन आया समाज में।
लेकिन साम्राज्य का क्या हो रहा था? वो तो जा रहा था ना।
हाँ, यही तो विरोधाभास है। देश के अंदर सुधार हो रहे थे और बाहर दुनिया में ब्रिटेन की पकड़ ढीली पड़ रही थी। 1947 में भारत आजाद हुआ।
हाँ,
1956 में स्वेज नहर का संकट आया, जिसने ब्रिटेन की कमजोरी साफ दिखा दी। अफ्रीका में आजादी की लहर चल पड़ी। ब्रिटेन को समझ आ रहा था कि अब वो दुनिया का बॉस नहीं रहा,
तो वो अपनी नई जगह तलाश रहा था कि अब हम क्या हैं।
बिल्कुल, क्या हम अमेरिका के छोटे भाई हैं, क्या हम यूरोप का हिस्सा हैं, या कॉमनवेल्थ के नेता? ये सवाल बहुत गहरे थे और उलझे हुए थे।
और फिर 70 के दशक में आकर ये जो आम सहमति थी वो टूटने लगी।
हाँ, 70 का दशक बहुत मुश्किल साबित हुआ। दुनिया भर में तेल का संकट आया, महंगाई आसमान छूने लगी, ब्रिटेन के उद्योग पिछड़ने लगे, और सरकारों और ट्रेड यूनियनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई।
वो विंटर ऑफ डिसकंटेंट वाली बात 1978-79।
हाँ, वो तो क्लाइमैक्स था। देश भर में हड़तालें, कूड़े के ढेर सड़कों पर, मुर्दा घर भरे हुए, मतलब देश थम सा गया था। बहुत निराशा का माहौल था।
और इसी माहौल में मार्गरेट थैचर आई 1979 में।
बिल्कुल, और वो एक तूफान की तरह आई। थैचर का आना सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, वो एक युग का बदलना था।
उन्हें इतना रेडिकल क्यों माना जाता है?
क्योंकि उनका एजेंडा ही रेडिकल था। मॉर्गन कहते हैं कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, वो एक धर्म योद्धा थी। उनका लक्ष्य था ब्रिटेन को जड़ से बदलना।
क्या किया उन्होंने?
उन्होंने सरकारी कंपनियों को बेचा, निजीकरण, बाजार को कंट्रोल से मुक्त किया, ट्रेड यूनियनों की ताकत तोड़ी, खासकर कोयला खानकों की 1984-85 की लंबी हड़ताल को हराकर, राज्य का दखल कम किया।
इसका असर क्या हुआ?
मॉर्गन मानते हैं कि यह बहुत विभाजनकारी था, समाज बढ़ गया, लेकिन इसने ब्रिटेन को बदल जरूर दिया। अर्थव्यवस्था ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो गई, ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक,
लेकिन असमानता भी बढ़ी।
हाँ, सामाजिक असमानता बहुत बढ़ गई। तो ये सदी का दूसरा बड़ा मोड़ था। पहला था 1945 में वेलफेयर स्टेट की तरफ, और दूसरा थैचर का मार्केट रिफॉर्म्स की तरफ। थैचर ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली, उन्होंने बहस के मुद्दे ही बदल दिए।
और फिर सदी के आखिर में 90 के दशक में क्या हुआ? थैचर तो चली गई थी।
हाँ, उनके जाने के बाद टोनी ब्लेयर आए न्यू लेबर के साथ। उन्होंने थैचर की कुछ आर्थिक बातों को मान लिया, लेकिन सामाजिक खर्च पर भी जोर दिया।
और कोई बड़ा बदलाव इस दौर में?
सबसे बड़ा बदलाव था डिवोल्यूशन, यानी शक्तियों का बंटवारा। 1999 में स्कॉटलैंड की अपनी संसद बनी, वेल्स की अपनी असेंबली। इसने यूनाइटेड किंगडम के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया।
तो सदी के अंत तक ब्रिटेन कैसा दिख रहा था?
वो 1900 वाले ब्रिटेन से बहुत अलग था। ज्यादा बहुसांस्कृतिक, ताकतें बटी हुई, अर्थव्यवस्था सर्विस और फाइनेंस पर आधारित, लंदन एक ग्लोबल शहर।
लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी थे।
हाँ, यूरोप के साथ रिश्ता क्या हो, ब्रिटेन की अपनी पहचान क्या है, ये सवाल 2000 में भी उतने ही अहम थे। मॉर्गन का आखिरी कोट याद आता है, 2000 का ब्रिटेन 1900 के शाही राष्ट्र से पहचाना नहीं जा सकता था। सदी की कहानी साधारण पतन की नहीं, बल्कि गहरे परिवर्तन की थी।
ये बदलाव की कहानी कभी खत्म नहीं होती।
नहीं होती।
अगर हम इस पूरी सदी की कहानी से कुछ बड़े, मतलब की थीम्स निकालें, तो वो क्या होंगे जो बार बार उभर कर आते हैं?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे लगातार चलने वाला थीम है वेलफेयर स्टेट का, उसका बनना, उसकी अहमियत और उस पर चलती बहस।
हाँ, NHS तो जैसे ब्रिटेन की पहचान का हिस्सा बन गया।
बिल्कुल, 1948 में बना, फिर थैचर ने उसे चुनौती दी, फिर न्यू लेबर ने उसे संभाला। ये ब्रिटेन के सामाजिक मूल्यों का एक आईना है। हम भारत में भी तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पर कितनी बात करते हैं। ये हर मॉडर्न देश के लिए जरूरी सवाल है।
दूसरा थीम तो पक्का साम्राज्य का अंत और नई पहचान की खोज होगा।
हाँ, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन था और दर्दनाक भी। भारत की आजादी, फिर स्वेज संकट, इन सब ने ब्रिटेन को अपनी असलियत दिखाई।
और फिर वो दशकों तक अपनी नई भूमिका ढूंढता रहा, कॉमनवेल्थ, अमेरिका का साथी, यूरोप।
हाँ, और ये तलाश देखा जाए तो ब्रेग्जिट के रूप में आज भी जारी है। अपनी पुरानी ग्लोबल पावर वाली पहचान खोकर एक नई रीजनल या अलग तरह की पहचान बनाना कितना मुश्किल हो सकता है, ये कई देश समझते हैं।
तीसरा थीम आर्थिक बदलाव और वो पतन वाली बात।
हाँ, और मॉर्गन का नजरिया यहाँ अहम है। वो इसे सिर्फ पतन नहीं मानते। हाँ, पुराने भारी उद्योग गए, कोयला, जहाज, लेकिन ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट था,
इंडस्ट्री से सर्विस और फाइनेंस की तरफ।
बिल्कुल, लंदन जैसे शहर चमक उठे, पर कई पुराने औद्योगिक इलाके पीछे रह गए। इससे पता चलता है कि आर्थिक बदलाव का असर सब पर बराबर नहीं होता। रीजनल असमानता एक बड़ी चुनौती बन जाती है। भारत भी तो ऐसी दौर से गुजर रहा है।
और चौथा, समाज में जो बदलाव आए, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। राजनीति अर्थव्यवस्था से हटकर देखें तो समाज भी तो बदला। पुराना क्लास सिस्टम कमजोर हुआ, महिलाओं की भूमिका, उनकी स्थिति बदली,
वोट के अधिकार से लेकर आगे तक।
हाँ, फिर बाहर से लोग आए तो ब्रिटेन मल्टीकल्चरल बना, सोच बदली, खासकर 60 के दशक के बाद ज्यादा उदारता आई। तो भले दुनिया में ताकत कम हुई हो, देश के अंदर व्यक्तिगत आजादी और विविधता बढ़ी, ये भी एक तरह का लाभ ही है।
तो ये किताब सिर्फ ब्रिटेन के बारे में नहीं, बल्कि बदलाव, पहचान, इन सब के बारे में है। आज के ब्रिटेन को समझने में कैसे मदद करती है ये?
अरे, बहुत ज्यादा। आज आप ब्रिटेन में NHS के बजट पर बहस देखिए, या ब्रेक्सिट को लेकर जो बंटवारा है लंदन और बाकी देश के बीच, या स्कॉटलैंड की आजादी की मांग,
इन सब की जड़ें इसी 20वीं सदी में हैं।
बिल्कुल, इतिहास को समझे बिना आज की राजनीति या समाज को समझना नामुमकिन है। मॉर्गन की किताब वो कनेक्शन दिखाती है।
और क्या सबक है हमारे लिए?
कई हैं। एक तो ये कि बड़े सामाजिक बदलाव जैसे वेलफेयर स्टेट बनाना, ये कोई आसान काम नहीं होता। अक्सर बड़े संकटों के बाद ही मुमकिन होता है, और फिर उसे बनाए रखना भी एक संघर्ष है।
और आर्थिक बदलावों को मैनेज करना कितना मुश्किल है।
हाँ, और ये सोचना कि उसका फायदा सब तक कैसे पहुंचे, कोई पीछे ना छूट जाए, और ये भी कि राष्ट्रीय पहचान कोई फिक्स चीज नहीं है, वो बदलती रहती है।
जैसे ब्रिटेन में साम्राज्य गया, फिर स्कॉटिश वेल्श पहचान मजबूत हुई।
बिल्कुल, और इतिहास की यादें कैसे आज की बहसों को शक्ल देती हैं। ब्लिट स्पिरिट ने वेलफेयर स्टेट को हौसला दिया, तो विंटर ऑफ डिस्कंटेंट ने थैचर के लिए जमीन तैयार की। मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख यह है कि इतिहास को सिंपल नैरेटिव में नहीं देखना चाहिए।
जी,
ब्रिटेन की कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है।
हाँ, ये मिलीजुली है।
कुछ खोया, कुछ पाया। साम्राज्य गया पर NHS आया। दुनिया के फैक्ट्री नहीं रहे पर लंदन फाइनेंशियल हब बन गया। ये कॉम्प्लेक्स है।
सही का।
और मेरे लिए सबसे कमाल की बात यह है कि इतने बड़े झटकों के बावजूद, दो विश्व युद्ध, एम्पायर का जाना, थैचर की क्रांति, ब्रिटेन एक स्टेबल डेमोक्रेसी बना रहा।
ये उसकी अडेप्ट करने की क्षमता दिखाता है,
उसका लचीलापन।
हाँ।
और NHS जैसी संस्थाएं जो 70-80 साल पहले बनी, वो आज भी कितनी रेलेवेंट है। मॉर्गन यही दिखाते हैं, गिरावट के आसान लेबल से आगे देखो और बदलाव और टिके रहने की असली जटिल कहानी को समझो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।